ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। हिंदू धर्मावलंबियों के बड़े त्योहार यम पंचक अंतर्गत आज मनाया गया भैया दूज। हलवाह मुक्ति की घोषणा हुए 17 साल गुजर जाने के बाद अब भी बाजुरा के हलवाह जमीन मालिकों के खेतों में हल जोतकर गुजारा चलाने को है मजबूर। ऊर्जा मंत्री कुलमान घिसिंग ने कहा अब तक उनके किसी पार्टी में जाने को लेकर नहीं हुई है कोई बातचीत। और रूस यूक्रेन का युद्ध अंत करने के उद्देश्य से मॉस्को पर और दबाव देने के लिए अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। हिंदू धर्मावलंबियों के बड़े त्योहार यम पंचक अंतर्गत आज भैया दूज मनाया गया। हर साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मनाई जाने वाली भ्रातृ द्वितीया यानी भैया दूज के दिन आज भाइयों ने अपनी बहनों से टीका लगवाकर दीर्घायु आरोग्य आदि के आशीर्वाद लिए। आज के दिन भाई अपनी बहनों से टीका लगवाते और बदले में उन्हें यथाशक्ति सुंदर उपहार देते हैं। वहीं काठमांडू घाटी समेत देश के विभिन्न जिलों में बसा नेवार समुदाय ने आज किया पूजा का त्योहार मनाया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपनी बहनों शारदा पंडित और चंदा ओझा के हाथों भैया दूज का टीका लगवाया। राष्ट्रपति पौडेल ने आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में पंचांग निर्णायक समिति द्वारा निर्धारित शुभ मुहूर्त 11:39 पर अपनी बहनों के हाथों से टीका लगवाया था। ये जानकारी राष्ट्रपति के स्वकीय सचिवालय ने दी है। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री कुलमान घिसिंग ने साफ किया है कि उनके किसी पार्टी में आबद्ध होने के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उज्यालो नेपाल पार्टी का अध्यक्ष बनाने संबंधी विभिन्न सामाजिक संजालों और संचार माध्यमों में आए समाचार के प्रति उनका गंभीर ध्यान आकृष्ट हुआ है। सरकार द्वारा हलवा मुक्ति की घोषणा किए 17 साल गुजर जाने के बाद अब भी बाजुरा के हलवा जमीन मालिकों के खेतों में हल जोतकर गुजारा चलाने को मजबूर हैं। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। साथ ही यहां की ज्यादातर महिलाएं भी बच्चों को सुबह शाम के निवाले और बच्चों की पढ़ाई के लिए मालिकों के यहां हल चलाने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने कहा कि तय समय पर चुनाव संपन्न कर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नेपाल प्रयत्नशील है। अंतरव्यवस्थापिका संघ आईपीयू की 15वीं महासभा में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रहे अध्यक्ष दाहाल और अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पहुंचे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि जेन जेड आंदोलन और उससे उत्पन्न नए राजनीतिक परिवेश में अंतरिम सरकार गठन और चुनाव की घोषणा हुई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14*# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिया है। तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए प्रतिबंधों का मकसद रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना है ताकि यूक्रेन के साथ युद्ध की फंडिंग पर असर पड़े। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि जब तक रूस गंभीरता से शांति वार्ता नहीं करेगा तब तक ऐसे प्रतिबंध जारी रहेंगे। अब अमेरिका के इस कदम पर रूस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिनमें से एक में सैंक्शन को युद्ध के समान भी बता दिया गया है। रूस की प्रवक्ता मारिया जाखारोव ने ट्रंप के सैंक्शन पर औपचारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध उल्टा असर करेंगे। ये प्रतिबंध रूस को अपने राष्ट्रीय हित छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। उन्होंने आगे कहा कि शांति प्रक्रिया पर बातचीत जारी रखने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है, लेकिन यह काम मीडिया लीक के जरिए नहीं बल्कि राजनयिक के माध्यम से होना चाहिए। मारिया के अलावा रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस का धुर विरोधी घोषित करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हालिया कदम रूस के खिलाफ युद्ध के समान है। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप ने किस तरह यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन अब वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक को इसराइल में शामिल करने की दिशा में इसराइली संसद की ओर से उठाया गया कदम गजा में जंग खत्म करने की योजना को खतरे में डाल सकता है। इसराइल के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने कहा, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम अभी समर्थन करें। बीबीसी के मुताबिक वे गजा के लिए बनाई गई अमेरिकी योजना और युद्ध विराम समझौते को मजबूत करने के प्रयासों के तहत इसराइल जा रहे हैं। इसराइल के अति दक्षिणपंथी नेताओं ने इसराइली संसद क्नेसेट में वेस्ट बैंक से जुड़ा एक विधेयक पेश किया है। यह विधेयक इसराइल को वेस्ट बैंक को अपने में शामिल करने का अधिकार देता है। हालांकि अभी यह विधेयक कानून नहीं बना है। फलस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इसराइली संसद के इस कदम की निंदा की है। वेस्ट बैंक पर सन 1967 से इसराइल का कब्जा है। फलस्तीनियों का कहना है कि वेस्ट बैंक फलस्तीन का हिस्सा है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने कहा था कि इसराइल का यह कब्जा गैरकानूनी है। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतान्याहू पहले भी वेस्ट बैंक की जमीन इसराइल में जोड़ने के समर्थन में बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया था। इससे इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका और उन अरब देशों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं जिन्होंने दशकों की दुश्मनी के बाद इसराइल से संबंध बनाए हैं। इसराइल के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल अति राष्ट्रवादी नेताओं ने बार बार मांग की है कि इसराइल सीधे तौर पर वेस्ट बैंक को अपने में मिला ले। हालांकि ये विधेयक सरकार के बाहर के सांसदों की ओर से पेशकश किया गया था। दिवाली के बाद भारत की राजधानी दिल्ली और एनसीआर की हवा एक बार फिर बहुत खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 362 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के आरके पुरम 362, पड़पड़गंज 361 और इंडिया गेट 353 जैसे इलाकों में प्रदूषण का स्तर ज्यादा दर्ज हुआ, जबकि आनंद विहार में AQI 428 तक पहुंच गया, जिसे सीपीसीबी ने गंभीर श्रेणी में रखा है। सीपीसीबी के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार शाम 4 बजे तक राजधानी का औसत AQI 351 था, जो 24 घंटे में और बढ़ गया है। एम्स 342 और अक्षरधाम मंदिर 350 के आसपास हवा की गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में रही। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखों का धुआं और हवाओं के अभाव के कारण वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति में सुधार और हल्की बारिश से अगले कुछ दिनों में स्थिति में हल्का सुधार हो सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिंदू धर्मावलंबियों के बड़े त्योहार यमपंचक अंतर्गत आज मनाया गया भैया दूज। हलवा मुक्ति की घोषणा हुए 17 साल गुजर जाने के बाद अब भी बाजुरा के हलवा जमीन मालिकों के खेतों में हल जोतकर गुजारा चलाने को हैं मजबूर। ऊर्जा मंत्री कुलमान घिसिंग ने कहा, अब तक उनके किसी पार्टी में जाने को लेकर नहीं हुई है कोई बातचीत, और रूस यूक्रेन का युद्ध अंत करने के उद्देश्य से मॉस्को पर और दबाव देने के लिए अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।